الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة النازعات کا ترجمہ ہم نے پچھلے کلاس میں مکمل کر لیا تھا، لمبی صورت ہے تو دو کلاسوں میں ترجمہ مکمل ہوا. آج ہم انشاءاللہ خلاصہ تفسیر اس کی شروع کر رہے ہیں. خلاصہ تفسیر معارف القرآن جو کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، کمپائلیشن ہے، اس میں حضرت نے خلاصہ تفسیر اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے اخذ کیا، وہاں سے لیا، اور مشکل الفاظ کو کچھ انہوں نے آسان کر دیا. باقی یہ بیان القرآن ہی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر. تو حضرت خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، والنازعات غرقا، یعنی نازعات سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں، لیکن کون سے فرشتے؟ جو کہ جان سختی سے نکالتے ہیں، یعنی کافروں کی. انہوں نے تفسیر میں لکھی کہ کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں. تو نازعات کا ترجمہ ہی جو ہے وہ فرشتوں سے کیا، ٹھیک ہے. اور غرق کا ترجمہ انہوں نے کیسے کیا؟ جو کہ غوطہ لگا کر کے، اس یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، لیکن مفہوم کیا بنا؟ کہ سختی سے جان نکالتے ہیں، گھس کر کے اندر سے کھینچ کر کے نکالتے ہیں بدن سے. اور وناشتات نشتا، تو اس کا ترجمہ حضرت نے کیسے کیا؟ کہ جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں. تو ناشتات بند کھولنے کو کہتے ہیں، بند کھولنے والے کو کہتے ہیں. تو بند کھول دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے جیسے کہ غبارے کے اندر جب آپ ہوا بھر دیتے ہیں، تو ہوا بھرنے کے بعد اس کے جو منہ ہوتا ہے غبارے کا، بلون کا، اس کے اوپر آپ ایک نوٹ لگا دیتے ہیں یا دھاگا باندھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بند کر دیا آپ نے اس کو. جب آپ کو غبارے میں سے ہوا نکالنی ہوتی ہے، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس نوٹ کو کھول دیں. جب نوٹ کو کھول دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں غبارے کو دبانا نہیں پڑتا، غبارے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے ہوا نکالنی نہیں پڑتی، بلکہ ہوا جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ آٹومیٹیکلی باہر نکل جاتی ہے. تو ایمان والوں کی روح اس طرح سے نکلے گی کہ گویا کہ بند کھول دیا اور وہ فوراً سے باہر نکل گئی، فزل آؤٹ ہو گئی. والسابحات سبحا، اور فرمایا کہ جو روحوں کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف اس طرح سرعت اور سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوا میں وہ گویا کہ تیر رہے ہوتے ہیں، جیسے گلائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو گلائڈر تو خالی اوپر سے نیچے آتا ہے گریویٹی کی وجہ سے، لیکن فرشتے جو ہیں یہ تو روحانی مخلوق ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تو ارتھ گریویٹی افیکٹ نہیں کرتی، تو یہ بڑی آسانی سے نیچے سے اوپر بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ سامنے بیٹھے ہوتے تو گویا ہاتھ سے جو ہے نا وہ یہ عاجز آپ کے سامنے وہ بنا کر کے دکھاتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ بڑے لوگ بھی کرتے ہیں کبھی، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ایئر پلین چلاتے ہیں، ایئر پلین بناتے ہیں، جیسے ہوا میں جہاز اڑ رہا ہے اور آپ کا کیا ہتھیلی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو اس ہتھیلی کو جیسے کہ آپ نیچے سے اوپر کے لے کر کے جائیں نا اڑاتے ہوئے، تو اس طریقے سے فرشتے جو ہے وہ اوپر تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پھر فالسابقات سبقا، کہ جب یہ روحوں کو لے کر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. یعنی یہ لے کر کے عرش کے قریب پہنچتے ہیں اور وہاں پر، بلکہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ اس روح کے بارے میں ان کو حکم فرماتے ہیں، یعنی اوپر لے کے جاتے ہیں کہاں تک؟ آسمان تک، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو آ جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو آسمان واپس دے مارو، واپس اس کی قبر کے اندر. اپنے آپ میوٹ کر لیجئے رحمت صاحب. ठीक है, तो अब ये हुक्म हो गया कि इसके साथ क्या करना है, तो उस हुक्म को बजा लाने में सबकत करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के फरमाबरदार मखलूक होते हैं, इनके पास नाफरमानी का मादा ही नहीं होता। तो अब ये फरमाबरदारी में भी तेजी दिखाते हैं, यानी सुस्ती के साथ फरमाबरदारी नहीं करते बल्कि तेजी के साथ फरमाबरदारी करते हैं, सबकत करते हैं एक दूसरे से। और हमें भी इसी तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम भी नेकी कामों के अंदर सबकत ले जाएं एक दूसरे से। फल यतनाफसल मुतनाफिसून, राइट, उसमें भी हमने यही सबकत वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो तेजी के साथ दौड़ते हैं, फिर फल मुदब्बिरात अमरा, फिर इन अरवाह के मुतालिक सवाब का हुक्म हो या इकाब का, दोनों अमरों में से हर अमर की तदबीर करते हैं। यानी अब इसको इसके लिए सेटअप कैसे करना है, इसकी कब्र के अंदर क्या मामलात करने हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ना ये बाहिमी मशवरा भी करते हैं। गोया कि ये पूरी टीम होती है जो कि आपस में सर जोड़ के बैठते हैं और करते हैं। अब बैठने का मतलब ये नहीं कि बकायदा टेबल के गिर्द जो है वो कुर्सियां लगा के बैठते हैं, लेकिन मकसद ये कि एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि जी कैसे जो है वो काम को करना है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपने अपने बचपन में या अपने अपने बचपन में या अपने बच्चों के बचपन में देखा हो कि ये जो कुछ होती है ना, ये यानी फेरी टेल्स, ठीक है, फेरी टेल्स की जो कहानियां होती है ना, तो यानी जो कहानियां होती हैं जिनको अंग्रेजी में फेरी टेल्स कहते हैं, तो उनके अंदर जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं ना, कुछ अजीब गरीब किस्म के वो गॉबलिन्स होते हैं, और उसमें कुछ जो है वो यानी कोई कोई एक फेरी होती है, और कुछ ड्वार्फ्स होते हैं, और कुछ कुछ होते हैं, तो इनकी गोया के जिस तरह की आपस में मामला चल रहे होते हैं ना, फरिश्तों के वैसे ही थे, वैसे ही मामला चलते हैं। हत्ता के अल्हम्दुलिल्लाह साजिद ने कोई ऐसी बहुत ज्यादा इस तरह की कहानियां पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी वर्क गर्दानी करने का मौका मिला, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो फेरी टेल्स के ऑथर्स हैं, उन्होंने शायद मुसलमानों के किताबों को पढ़ करके अपनी फेरी टेल्स बनाई है। खुसूसन मेराज का वाकया, मेराज के वाकये के अंदर भी ना फरिश्तों के जो मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे, वो भी ऐसे ही है गोया के एलिस इन वर्ल्ड वंडरलैंड की स्टोरी के अंदर, ठीक है, क्या यहाँ गए ऐसे मामला हो रहे थे, उधर गए ऐसे मामला हो रहे थे, वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, इस तरह, यानी अजीब। तो फरिश्तों के मामला ऐसे ही आपस में ये मिलजुल करके काम करते हैं, भागते हैं। फासिक फाजिर मुसलमान की रूह के निकलने का क्या मामला होता है? जो फासिक फाजिर मुसलमान होता है तो उसके भी गुनाह यानी काफिर के जैसा उसके साथ मामला होता है, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह डिस्कशन आगे भी थोड़ी करेंगे, अगर ना करी तो आप अगर याद दिला दें उस वक्त जब मार्फ मसाइल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो फरमाते हैं कि इन अरवाह के मुतालिक सवाब का हुक्म हो या अताब का, दोनों अमरों में हर अमर की तदबीर करते हैं। अब इन सब की कस्में खाकर, यहाँ पर कस्में खत्म हो गई, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तरजुफुर राजफा, कि इन सब की कस्म खाकर कहते हैं कि कयामत जरूर आएगी जिस रोज हिला देने वाली चीज हिला डालेगी। मुराद नफखे उला है, यानी पहली दफा जब इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूकेंगे तो हर चीज हिलनी शुरू हो जाएगी, जमीन फटनी शुरू हो जाएगी, और पहाड़ जो है वो अपने जमीन के फटने की वजह से पहाड़ उखड़ जाएंगे अपनी जगहों से, क्योंकि पहाड़ कीलों की मानिंद है, और कील जब हम गाड़ते हैं लकड़ी के अंदर तो कील का कुछ हिस्सा ऊपर होता है और ज्यादा हिस्सा नीचे होता है, लेकिन अगर लकड़ी फट जाए जिसके अंदर कील लगी हुई है, अगर वो लकड़ी फट जाए तो कील बाहर निकल आती है। अब वो कील जो है वो लुढ़कती फिरती है, अगर जमीन ऊपर नीचे हो जाए तो कील लुढ़क करके उधर चली जाएगी, ठीक है, इंक्लाइन डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। उसी तरीके से पहाड़ जो है वो उखड़ करके बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनके नीचे की जमीन फट चुकी है। अब वो इधर उधर लुढ़कते फिरेंगे क्योंकि वो अभी तक एक वन पीस है, वन बॉडी है, फिर बाद में जो है ना ये रेजा रेजा हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर हिलाई जाए और बड़ी यानी वजनी चीजें उसके ऊपर आ जाए मजीद, या किसी और किस्म का प्रेशर डेवलप हो जाए, तो अब वो वजनी चीज आखिर रेजा रेजा हो जाती है, ठीक है। तो फिर पहाड़ बिलाखिर रेजा रेजा होकर के फिर ये रुई के गालों की तरह से उड़ते फिरेंगे, रंगीन रुई के गालों की तरह से, कल कल अहनल मनफूश, ठीक है, सूरह कारिया के अंदर इस तरह फरमाया। तो इस नफ़ा उला के बाद हर चीज जो है वो हिल जाएगी, यौमा तरजुफुर राजफा, कांपने वाली है ये, तदबउहर रादिफा, तो जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज आएगी। अब ये पीछे क्या चीज आएगी, यानी उसके बाद क्या होगा, नफ़खे सानिया, क्योंकि नफ़खे उला से सारे जानदार तो मर जाएंगे, फिर जो बेजान होंगे यानी जिनको हम जमादात कहते हैं वो भी टूट टूट करके बिखर जाएंगे, आसमान जो है वो भी यानी फट जाएगा और सितारे जो है वो आसमान से यानी जमीन की तरफ गिर पड़ेंगे, झड़ पड़ेंगे वो अपनी अपनी जगहों से। और जो हमारा सबसे करीबी सितारा है जो कि सूरज है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ना कि वो हमारे जमीन के ऊपर आके गिर पड़ेगा, ठीक है, और जमीन के ऊपर टोटल पानी हो चुका होगा उस वक्त तक, क्योंकि सारे समंदर जो है वो जमीन के फटने की वजह से वो सारे समंदर आपस में मिल जाएंगे, तो अब पूरी जमीन ही समंदर बन जाएगी, क्योंकि जमीन 2/3 वाटर है और 1/3 यानी लैंड है, ठीक है, तो 2/3 वाटर जो है वो फैल जाएगा और पूरी जमीन समंदर बन जाएगी, ऊपर से सूरज आकर के इस समंदर के अंदर गिर पड़ेगा। तो इसके बाद फिर पूरी ये निजाम जो है वो खत्म हो जाएगा और अल्लाह ताला फिर उसके बाद फरिश्तों को भी मौत दे देंगे, फरिश्ते भी मर जाएंगे, हत्ता के जो मौत के फरिश्ते हैं हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह ताला उनको खुद से मार देंगे, क्योंकि अब उनको मारने के लिए वो खुद तो नहीं अपने आप को मार सकते, तो अल्लाह ताला उनको मौत दे देंगे। फिर उसके बाद बहुत लंबा अरसा गुजरेगा जिस अरसे के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की जात होगी और कुछ भी नहीं होगा, सब मर चुके होंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम सारे के सारे मर चुके होंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम भी, तो सिर्फ अल्लाह की जात रह जाएगी। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का दिन किसका है, किसकी मिल्कियत है आज के दिन, कोई है बादशाह मेरे अलावा, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाएंगे इसका जवाब, क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, वाहिद कहार अल्लाह के लिए है ये दिन और इसके अलावा किसी की मिल्कियत नहीं है इस दिन में। तो ये लंबा अरसा गुजरेगा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा से फरिश्तों को जिंदा फरमाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम को, और उनसे कहेंगे अब तुम दोबारा सूर फूंको, नफ़खे सानिया, जब ये नफ़खे सानिया होगी तो उसके बाद सारे मुर्दा जो है वो दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, इंसान जिन और सारे के सारे हैवानात, ये सब के सब जिंदा हो जाएंगे और सब जो है फ़ाइज़ा हुम बिस्साहिरा, एकदम से सारे के सारे अल्लाह ताला के हुक्म से एक मैदान में जमा हो जाएंगे साहिरा के अंदर, पिछली सूरत में जो हमने पढ़ा था। तो उस वक्त क्या मामला होगा, बहुत से दिल उस रोज धड़क रहे होंगे, कुलूबुन यौम इज़ियुं वाजिफा, धड़क रहे होंगे बहुत सारे दिल, उनकी आंखें मारे नदामत के झुक रही होंगी, अबसारुहा खाशिया, खाशिया होंगी उनकी आंखें, झुकी हुई होंगी, जैसे कि नमाज के अंदर हमें खुशू और खुजू का हुक्म दिया जाता है, आंखों को झुकाओ, इधर उधर मत देखो, खुशू के साथ खड़े हो, तो उस तरह से कयामत के दिन सबकी आंखें झुकी हुई होंगी। मगर ये लोग कयामत का इनकार कर रहे हैं और यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, क्या कहते हैं कि क्या हम पहली हालत में फिर वापस होंगे, पहली हालत से क्या मुराद कि हयात कबल अल ममात है, यानी क्या बादल मौत भी हयात सानिया होगी, यानी जैसी मरने से पहले हमारी हयात थी क्या मरने के बाद वैसी हयात दोबारा से हो जाएगी, मरदूदून का यह मतलब है। और कहते हैं कि यानी मकसूद इस्तेबाद है कि ये कैसे हो सकता है, यानी ये जो सवाल कर रहे हैं ना ये सवाल दरअसल इनकारी सवाल कर रहे हैं, इनकारी नियत के साथ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बईद चीज है, इस्तेबाद का मतलब कि बहुत बईद, बहुत दूर वाली बात है ये, तो मकसूद इनका ये है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही दूर के लेकर आए हैं, ठीक है, बहुत ही फार फेच्ड किस्म की चीज है ये। तो कहते हैं कि आइजा कुन्ना इज़ाम नखरा, के क्या जब हम बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे फिर हयात की तरफ वापस होंगे, मकसूद इससे इस्तेसआब है कि ये सख्त दुश्वार चीज है, ठीक है, पहला लफ्ज क्या था इस्तेबाद, जिसके हरूफ असली थे बाउदा, बा ऐन दाल, बईद होना जिसको कहते हैं, और ये क्या लफ्ज है इस्तेसआब, ये भी उसी बाब से है, इसके हरूफ असली क्या है साबा, साबा का मतलब होता है सख्त दुश्वार चीज, साब, ठीक है, तो ये तो सख्त दुश्वार बात है। कालू तिल का इधन कर्रतुन खासिरा, तो कहते हैं यानी ये कैसे कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो इस सूरत में ये वापसी हमारे लिए बड़ी खसारे की होगी, ठीक है, अगर ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं कि ये मानते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन इनको भी पता है कि अगर ऐसा हो गया ना तो हम मारे जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि तो ये तो बड़ी खसारे वाली बात होगी, क्योंकि हमने तो उसके लिए कुछ सामान नहीं किया, मकसूद इससे तमस्खुर था, यानी ये हंसी मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, जिसको कहते हैं ना तमस्खुर कर रहे थे अहले हक के इस अकीदे के साथ, यानी इनके अकीदे में, इनके अकीदे पर हम बड़े खसारे में होंगे। जैसे कोई शख्स किसी को खैरख्वाही से डराए कि इस राह मत जाना, शेर मिलेगा, और मुखातब यानी जिससे जिसको डराया जा रहा है वो तकजीब के तौर पर उससे कहे कि भाई उधर मत जाना, शेर खा जाएगा, मतलब ये कि वहां शेर वेर कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे ही आपको बातें बना रहा है, ठीक है। यानी डराने वाला जो है वो तो यकीन से डरा रहा है कि भाई सामने शेर है, तुम उधर जाओगे तो शेर खा लेगा, और ये जिसकी ये खैरख्वाही कर रहा है ये आगे से ना तमस्खुर के तौर पर कहे कि दूसरों से कहे कि नहीं नहीं उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर शेर तुम्हें खा लेगा, लेकिन तमस्खुर की वजह से कह रहा है। तो यही जो है ये अंदाज़े गुफ्तगू काफिरों का यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बड़े खसारे वाले ये हयात होगी, ये जिंदगी होगी। आगे इस्तेबाद व इस्तेसाद मजकूर का रद है, ठीक है। यानी जो इन्होंने इस्तेबाद वाली बात करी कि तो बहुत बईद है और बहुत सख्त है, बहुत सख्त दुश्वार है, तो अब इसका ना रद कर रहे हैं अल्लाह ताला कि ये लोग जो कयामत को बईद और मुश्किल कहते हैं तो ये समझ रखें कि हमको कुछ मुश्किल नहीं है। फइन्नमा हिया जजरतुन वाहिदा, बस ये तो सिर्फ एक झिड़की है, हमने कुछ नहीं करना, हमने तो अपने फरिश्तों को हुक्म देना है, उसने एक झिड़की देनी है, ठीक है, और बस सब कुछ हो जाएगा, तो हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं कि हमको कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि वो बस एक ही सख्त आवाज होगी जिससे सब लोग फौरन ही मैदान में आ मौजूद होंगे। अब सॉरी, इसी सूरत में हमने ये पढ़ा था, वैदा हूँ बिस्साहरा, एकदम से इजा मुफाजातिया, ये जो इजा है ना ये मुफाजातिया है, मुफाजात का मतलब होता है एकदम से, अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है। तो अचानक से जो है ये मामला हो जाएगा कि सारे के सारे खुद ही मैदान में मौजूद होंगे। जैसे होता है ना कि आपने अगर जमाने जाहिलियत में, उम्मीद है कि अब जमाने जाहिलियत गुजर चुका होगा सबका, ठीक है, तो जमाने जाहिलियत में अगर कोई फिल्म वगैरह देखी होगी, साइंस फिक्शन टाइप की फिल्म, तो उसके अंदर देखा होगा कि जी कोई लोग जो है वो एकदम से सो के जब उठते हैं ना तो सारे के सारे एक ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पूरा एक मैदान है और सब के सब उसके अंदर मौजूद हैं। तो गोया इसी किस्म का एक मामला होगा वहां पर, कि अपने आप को मैदान में मौजूद पाएंगे, बल्कि जमाने जाहिलियत की फिल्मों की भी सोचने की जरूरत नहीं है, बचपन में हमने ऐसी कहानियां पढ़ी हैं, ये हातिम ताई की कहानी होती थी, हमारे हमदर्द नौनिहाल के अंदर आता था पूरा वो, तो उसके अंदर ऐसी किस्म की बातें होती थी, एकदम से मैंने आंख खोली तो मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, ठीक है। ऐसे ही मामला उस वक्त होगा कि सारे मैदान में आ मौजूद होंगे। आगे मुकज्जबीन की तख्वीफ और तकजीब पर आपकी तसल्ली के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा फिरौन के साथ बयान किया जाता है कि ये जो आपके तकजीब करने वाले आपको छोटा बना रहे हैं, तख्वीफ कर रहे हैं आपकी, आप बल्कि आपको जो छोटा नहीं बना रहे, आपको जो यानी खौफ दिला रहे हैं, आपसे दुश्मनी मोल दुश्मनी वाला मामला कर रहे हैं और आपकी तकजीब कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर आप परेशान ना हो, बल्कि याद कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबियों में से एक ऐसे नबी हैं कि जिनके साथ नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा मुशाबहत थी, सबसे ज्यादा मुशाबहत थी। तो अल्लाह ताला इसी वजह से कुरान के अंदर दूसरे नबियों के भी वाकयात बयान फरमाते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात सबसे ज्यादा बयान फरमाते हैं। उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से सबसे ज्यादा मुशाबहत हासिल है, ठीक है। तो उनकी उम्मत का भी बहुत ज्यादा तज़किरा, बनी इसराइल जिनको कहते हैं। तो यहां पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फिर वाकया शुरू किया कि क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहुंचा है, जबकि उनको उनके परवरदिगार ने एक पाक मैदान यानी तुवा में, ये उस मैदान का नाम है, इसम जामिद के, बस ये नाम है उस मैदान का तुवा, ठीक है, कि उस मैदान में पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी शरारत इख्तियार की है, सो उससे जाकर कहो कि क्या तुझको इस बात की ख्वाहिश है कि तू दुरुस्त हो जाए। हल अता का हदीस मूसा इज नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दस तुवा, जब उसके रब ने उसको पुकारा, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल खिदमत करके फिर शोएब अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक उनकी एक बेटी को निकाह में लेकर के अब वापस जा रहे थे, ठीक है, मिस्र की तरफ, जहां से कि वो भाग कर आए थे क्योंकि खौफ हो गया था कि उन्होंने एक किप्ती को कत्ल कर दिया था अनजाने में, जानबूझ के तो कत्ल नहीं किया था लेकिन वो मर गया था उनके एक मुक्के से, तो वहां से फिर निकल खड़े हुए थे। तो अब वापस जा रहे थे कि चलो अब इतना अरसा गुजर चुका है, अब लोग भूल गए होंगे, मेरी वहां पर रिश्तेदार हैं, बहन है, ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ वहां पे, देखता हूँ क्या मामला है। तो अब जा रहे थे, अब ये रास्ते में पड़ी थी ये जगह, तो जब इस वादी में पहुंचे तो आवाज आई, ठीक है, या बल्कि वो था कि भाई सर्दी थी और बीवी जो है वो हमल से भी थी, तो बीवी की सहूलत के लिए, आराम के लिए इनको फिक्र हुई कि मैं कैसे इसको आराम पहुंचाऊं, इसकी सर्दी को कैसे दूर करूं। तो दूर से उनको आग नजर आई, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से कुछ आग लेकर के आता हूँ, किसी तरीके से किसी चीज को जला करके वहां से फिर यहाँ पे लेकर आता हूँ, आपके लिए आग जलाता हूँ ताकि आपकी आसानी हो। तो बीवी की खिदमत की खातिर, बीवी की सहूलत की खातिर जब वहां पर गए तो अल्लाह मिल गया, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे मशायख फरमाते हैं ना कि जी बीवी की खिदमत करनी होती है, बीवी का भी सहूलत का ख्याल करना होता है, खाली ये नहीं बीवी से खिदमत नहीं करवानी होती है। तो वहां पर गए तो वहां पर अल्लाह ताला ने उनको पुकारा, ठीक है, और फिर वहां पर सारी कॉन्वर्सेशन हुई मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, वो असा वगैरह के बारे में, और वहीं पर जो है वो मौजजे भी मिले। और सारी कॉन्वर्सेशन के बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इज़हब इला फिरौना, जाओ फिरौन के पास, इन्नहु तगा, वो बागी तागी हुआ है। तो फरमाया कि सो इससे जाकर कहो कि क्या तुझको इस बात की ख्वाहिश है कि तू दुरुस्त दुरुस्त हो जाए, फकुल हल लका इला अन तज़क्का व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और तेरी दुरुस्ती की गर्ज से मैं तुझको तेरे रब की तरफ जात व सिफात की रहनुमाई कर दूं, ठीक है, यानी तुझे खौफ हो जाए, का डर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद अब करना क्या है ये तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ताला ने ये तरीका बताया हुआ है, मैं तुम्हारी रहनुमाई कर दूंगा। तो तू जात व सिफात को सुन तो तू डरने लगे, ठीक है, यानी जात व सिफात को सुनकर उससे डरने लगे, तो मैं तफसीलात अल्लाह ताला की तुम्हें बता दूंगा। तो इसी वजह से इब्तिदा में इंसान को अल्लाह ताला का सिर्फ एक इदराक होता है कि हाँ कोई खालिक है, कोई मालिक है, कोई पालने वाला है, ये सारा निजाम ऐसे ही नहीं चल रहा, लेकिन उसको अल्लाह ताला की मजीद तफसीलात पता नहीं होती, सिफात का पता नहीं होता, ठीक है, अल्लाह ताला की जो है वो जो जो शरीयत है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं बंदों से करवाना, ये इंसान को पता नहीं होता। ये कैसे पता लगता है, ये इंसान को रसूल से पता लगता, ठीक है, तो अल्लाह तक रहनुमाई ये तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक करती है, सारी मखलूक, चाहे वो जानदार हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे हमारे अपने जिस्म के अहवाल हो, हर चीज अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती है, जो अपनी अकल को इस्तेमाल करता है उसको, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करने के बाद तफसीलात की जरूरत पड़ती है। ये तफसीलात कहाँ से आती हैं, ये रसूलों से आती हैं, ये तफसीलात इंसान खुद से नहीं अखज कर सकता, खुद से अज्यूम नहीं कर सकता, इसके लिए अल्लाह ताला ने इल्म का सिस्टम रसूलों के थ्रू बनाया है। तो फरमाया कि जब तुम यानी अल्लाह ताला से डरोगे तो फिर उसके बाद मजीद तफसीलात जो है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं रहनुमाई कर दूंगा, तो इस डर से दुरुस्ती हो जाए, यानी तुम ठीक हो जाओ इस डर की वजह से। गर्ज ये हुक्म सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए, और उसके पास यानी उनके पास गए, या फिर फिरौन और फिरौन के जो 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 दरबारी थे उनके पास गए और जाकर पैगाम अदा किया। फिर जब उसने दलील नबूवत तलब की, फराहुल आयतल कुबरा, तो उसको बड़ी निशानी नबूवत की दिखलाई। मुराद मौजज़ाए असा है या बा इरादे जिनसे मजमुआ असा और यद बैजा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों निशानियां वहां पर दिखाई थी, ठीक है। आयतुल कुबरा, तो यहाँ पर आयत का लफ्ज चूंकि वाहिद का सीगा है, तो फरमाया कि इस वाहिद के सीगे के अंदर ही जिनसे मजमुआ, ठीक है, कुछ वाहिद के लफ्ज भी होते हैं वो भी जमा की तरफ पॉइंट करते हैं, तो दोनों मुराद हैं यहाँ पर, असा भी और यद बैजा भी। आप अलैहिस्सलाम की हथेली के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा अंडे की शक्ल की सफेदी दे दी थी कि जब हथेली को खोलते थे तो उसके अंदर से रोशनी निकलती थी, और इतनी रोशनी होती थी कि पूरा का पूरा माहौल जो है वो रोशन हो जाता था, उसको यदे बैजा कहते हैं। तो उस फिरौन ने उनको झुटलाया, फकल दबा, और उनका कहना ना माना, किनका कहना ना माना? मूसा अलैहिस्सलाम का कहना ना माना, क्योंकि अल्लाह ताला का पैगाम मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कहना ना माना, अल्लाह ने तो जाकर के बात नहीं करी थी फिरौन से, बात तो मूसा अलैहिस्सलाम ने करी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कहना ना मानना यही अल्लाह ताला का कहना ना मानना कहलाएगा। इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नबी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करता, तो असा जो है वो अल्लाह की नाफरमानी ही कहलाएगी। फिर तो क्या हुआ कि तुम अदबरा यसआ, फिर उनके सामने बआवाज़े बुलंद उसने तकरीर की। अच्छा फिर क्या हुआ? नहीं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होकर उनके खिलाफ कोशिश करने लगा और लोगों को जमा किया, फहाशरा उसने लोगों को जमा किया और फिर उनके सामने बआवाज़े बुलंद तकरीर करी, खिताब किया अपने लोगों को और कहा कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। फकाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अब आला की तफसीर बयान कर रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर कि आला की जो कैद लगाई ना, ये वाकई तौर पर कहा, बस उसका असल मकसूद था अना रब्बुकुम, ठीक है, यानी कह रहा था कि मैं तुम्हारा रब हूं। और आला जो है वो सिफत मादहा बढ़ा दी, यानी अपनी मदाह में उसने एक सिफत ऐड कर दी रब के साथ, ठीक है, कि मैं जो हूं ना वो सबसे बड़ा रब हूं। इसका मतलब ये नहीं था कि जो आगे फरमाया ना कि एहतराजी नहीं है, ये सिफत मादहा बढ़ा दी और एहतराजी नहीं जिससे गैर आला दूसरे रब का सबूत हो, यानी वो कह रहा था कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे और रब भी हैं और मैं उनमें सबसे बड़ा रब हूं, ये नहीं कहना चाह रहा था। एहतराजी का ये मतलब होता है कि दूसरों की नफी कर दी और अपने आप को सबसे बड़ा कर दिया, बल्कि वो कह रहा था कि सिर्फ मैं ही हूं और मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बहुत बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन वो दूसरों की नफी नहीं कर रहा था क्योंकि वो किसी दूसरे को मानता ही नहीं था, वो सिर्फ अपने आप को मानता था, ठीक है, सिर्फ अपने आप को रब। तो इसी वजह से ना ये जो अना रब्बुकुमुल आला है, इसी को फिर हमारे मशायख तसव्वुफ की जुबान में कहते हैं कि ये इंसान का नफ्स है, ये इंसान का नफ्स है। फिरौन का भी नफ्स था जिसने के उससे ये दावा करवाया, क्योंकि नफ्स जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रब कहता है, कहलवाना चाहता है, वो किसी दूसरे रब को नहीं मानता, वो किसी को नहीं मानता, वो सिर्फ अपने आप को मानता है। तो फिरौन ने अपने नफ्स से मغلوب होकर के ये दावा किया था कि मैं रब्बुकुमुल आला हूं, तो एहतराजी नहीं था ये, बल्कि अपने आप को ही जो है ना मजीद चढ़ा रहा था, मजीद अपनी तारीफ कर रहा था, मादहा मदह कर रहा था, अपनी तारीफ कर रहा था अपनी। इंसान का नफ्स भी ऐसे ही करता है, वो किसी दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये आला की तफसीर उन्होंने लिखी। सो अल्लाह ताला ने उसको आखिरत के और दुनिया के अजाब में पकड़ा, फअखज़हुल्लाहु नकाल आखिरती वल उला। दुनियावी अजाब तो गर्क है, ठीक है, उसको पानी के अंदर गर्क किया, और उखरवी अजाब हरक यानी जलना है, तो गर्क और हरक, हरक मीनिंग जलना, जलना। तो खैर इसकी तफसीर मारूफ मसाइल में और इंशाल्लाह आएगी। इन्न फी ज़ालिका लइबरत लिमन यख्शा, तो फरमाते हैं कि बेशक इस वाकये में ऐसे शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो अल्लाह ताला से डरे, ठीक है, इस वाकये में बड़ी इबरत है, यानी ये हमें जो वाकया बयान किया जा रहा है कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से जो वाकया पता चल रहा है, इससे कौन डरेगा? इससे सिर्फ वही डरेगा, यानी वही इबरत हासिल करेगा जो कोई ऑलरेडी मानने वाला हो, और जो नहीं मानने वाला होता उसके साथ क्या मामला होता है? वो मिस्र के अंदर म्यूजियम में जाकर के फिरौन की लाश को देखता है, राइट, मिस्र के म्यूजियम में जाकर के फिरौन की लाश को देखता है, और साथ साथ उसको ये भी बताया जाता है, मिस्र के म्यूजियम में बताया जाता है, या उसने कहीं ना कहीं जो है वो मुसलमानों के लिटरेचर में पढ़ा होता है कि 1400 साल पहले जो कुरान मुसलमानों को के पास मौजूद था उसके अंदर इस फिरौन की लाश के प्रिजर्व होने का वाकया लिखा हुआ है, राइट, उस कुरान के अंदर ये बात मौजूद है कि फिरौन की लाश को प्रिजर्व किया जाएगा, और वो अपनी निगाहों से उसको हक देखता है फिर भी नहीं मानता, फिर भी ईमान लेकर नहीं आता, फिर भी मुसलमान नहीं होता, राइट। तो ये निशानियां जो होती हैं, इन निशानियों से ये काफिर जो सख्त दिल हो चुके होते हैं, ये इन निशानियों से ईमान लेकर के नहीं आते हैं। हाँ, ईमान वाले जो होते हैं उनके ईमान में इजाफा हो जाता है, उनके यकीन में इजाफा हो जाता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने ये उसूल पहले से बता दिया है कि इन्न फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा अअन्तुम अशद्दु खल्कन अम समाउ बनाहा। अब इसके बाद इंसान की तख्लीक के बारे में फरमा रहे हैं कि भला तुम्हारा आगे कयामत को बईद या मुश्किल समझने का अकली जवाब दे रहे हैं, यानी भला तुम्हारा दूसरी बार पैदा करना फी नफ्स ही ज्यादा सख्त है या आसमान का। और फी नफ्स ही इसलिए कहा कि अल्लाह ताला की कुदरत की निस्बत से तो सब मसावी हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए जमीन और आसमान का पैदा करना उतना ही आसान है जितना एक इंसान को पैदा कर देना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इंसान को पैदा करना ज्यादा आसान था, जमीन आसमान को पैदा करना मुश्किल है, या जमीन आसमान को पैदा करना ज्यादा आसान था क्योंकि उनके स्ट्रक्चर ज्यादा सिंपलर होता है और इंसान का स्ट्रक्चर ज्यादा मुश्किल था। उसके अंदर जो है वो कैसे कैसी वेन्स और कैपिलरीज का पूरा एक जाल बिछाना था, तो इंसान को पैदा करना निस्बतन मुश्किल था। बिल्कुल नहीं, सब बराबर है अल्लाह ताला के लिए, कोई मसला ही नहीं है कोई, तो ये सब मसावी है। ये चीजें कहाँ से आती हैं, ये सब क्या है कि अल्लाह ताला के लिए सब मसावी है, ये सब कहलाता है अकीदा, ये कहलाता है अकीदा। ठीक है, ये अकीदे की डिटेल्स होती हैं। अल्लाह ताला खालिक है, ये तो ईमान हो गया। ठीक है, अब इस खालिक की तफसीलात क्या है कि अल्लाह ताला के खल्क की जो सिफत है ये हर एक के ऊपर हावी है और हर एक की तख्लीक अल्लाह ताला के लिए आसान है, कोई फर्क नहीं है अल्लाह ताला के लिए। ये तफसीलात जो होती है ना, ये अकीदा कहलाती है। और इस दौर के अंदर शैतान जो है वो ईमान पे डाका डालने से पहले अकीदे पे डाका डालता है, अकीदे को खराब करने की कोशिश करता है। और जब अकीदा खराब हो जाता है, मुतजलजल हो जाता है, कच्चा हो जाता है, उसके बाद ईमान पर हमला करता है। तो अकीदे की तफसीलात जो हैं ये भी बहुत अहम है, और ये तफसीलात अवामुन नास अजबर नहीं कर सकते। अजबर कि उनको हर वक्त रटी रहे अकीदे की तफसीलात, ये अवामुन नास के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो हर वक्त रट करके रहें, हर वक्त याद रखें, और हर वक्त जो है वो जब ये बदअकीदा लोग, मुलहिद लोग उनके अकीदे पर हमला करें तो वो उनके हमले का मुकाबला कर सकें, ये अवामुन नास के लिए मुमकिन नहीं है। तो क्या करना होता है, उनको उलमा के साथ मजबूत निस्बत के साथ जुड़ के रहना होता है। इस निस्बत की वजह से वो इन हमलों से महफूज रहते हैं। जिसने ये निस्बत नहीं बनाई उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसके अकीदे पर कैसे हमला किया जा रहा है, कैसे उसके अकीदे को खराब किया जा रहा है, उसको नहीं पता लगेगा। लेकिन जो उलमा के साथ जुड़कर रहेगा पक्की निस्बत के साथ, यानी उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल खोल के रखेगा, तो ये निस्बत, ये ताल्लुक उनका उलमा के साथ, ये उसको अकीदे की खराबी से महफूज रखेगा। इसलिए कि कोई भी अनहोनी बात होगी वो आगे से जाके मेंशन करेगा, वो पूछेगा, वो कम से कम जिक्र करेगा, तस्किरा करेगा। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये गैर मामूली बात है तो वो पूछेंगे भी नहीं, लेकिन तस्किरा करेंगे, तस्किरा करेंगे। ठीक है, तस्किरा करेंगे तो आगे से उनके जो शेख होंगे या उनके जो आलिम होंगे, उनके जो टीचर होंगे, वो भांप लेंगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, भांप लेंगे कि गड़बड़ है। ठीक है, तो तस्किरा करने से भी अकीदा महफूज हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को पूछें भी, लेकिन जिसका कि इस तरह का आना जाना नहीं होगा, मजलिस में उठना बैठना नहीं होगा, जहां पर कि इस तरीके से इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, कुछ लोग बयानात में आते हैं और बयान खत्म होते ही उठ के भाग जाते हैं, उसके बाद एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, इनफॉर्मल मजलिस होती है, उस मजलिस में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, तस्किरा होता है, बयान में ये सारी तफसीलात डिस्कस नहीं होती। वहां पर तो एक फॉर्मल सा बयान होता है, एक टॉपिक होता है, वो डिस्कस होकर खत्म हो जाता है, वहां पर पूछने और जवाब देने का सिलसिला नहीं होता। तो इस वजह से अगर लोग बयान में आ भी रहे ना, तो उनको भी चाहिए कि वो फिर जो निजी मजलिस होती है, फॉलो अप मजलिस होती है, उसमें भी हिस्सा बने और उसके अंदर खुद भी पूछें, दूसरों के सवालात को गौर से सुने। कुछ लोग जो है वो मजलिस के बाद फिर अपनी छोटी मजलिस बना लेते हैं, वो फिर कोने में बैठ करके अपनी मजलिस बना लेते हैं, वहां जाकर के कुछ कुछ डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ये ना सिर्फ बेअदबी है, ये ना सिर्फ बेअदबी है, बल्कि इसकी वजह से वो जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, वो उनसे भी महरूम हो जाते हैं। तो इस बेअदबी की फिर सजा भी मिल सकती है कि आप जो है वो किसी अहम तफसील से महरूम कर दिए गए, तो इसकी वजह से फिर आप जो है वो उस हमले का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जो कि आपके इल्म में नहीं होगा कि हमला कैसे कर रहा है शैतान हमारे ऊपर। तो इस वजह से एक इनफॉर्मल कनेक्शन भी बनाना जरूरी है कि जिसके अंदर आप ये चीजें डिस्कस कर सकें, इनका तस्करा कर सकें और दूसरों के तस्करों से फायदा उठा सकें। ऐसे नहीं है, ये कहफ का जो कॉन्सेप्ट है ना कि कहफ के अंदर जम करके रहो, कहफ का हिस्सा बनो। ये जो दज्जाल का जमाना है, इस दज्जाल के जमाने में ऐसे ईमान पर हमला होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे हमला हो रहा है, दज्जल और फरेब के जरिए से हमला होगा। तो जो कहफ के अंदर अच्छे से घुसेगा, घुस करके रहेगा कहफ के अंदर, फिर उसको पता चलता रहेगा, वो महफूज रहेगा। और जो फ्रिंजेस के अंदर रहेगा या कहफ से बाहर रहेगा, या ये कि थोड़ी देर के लिए आया फिर भागा वहां से, तो वो भी कहफ का हिस्सा नहीं कहला सकता, कहफ का हिस्सा नहीं बना वो शख्स, तो उसका ईमान कैसे महफूज रहेगा। तो आगे फरमाया कि ये यानी अल्लाह ताला के लिए सब मसावी हैं, और जाहिर है कि आसमान ही का पैदा करना ज्यादा सख्त है, फिर जब उसको पैदा कर दिया तो तुम्हारा पैदा करना क्या मुश्किल है, क्योंकि हमारी अकल के मुताबिक, हमारी समझ के मुताबिक इतनी बड़ी चीज को पैदा करना जरा ज्यादा सख्त नजर आता है। तो फरमा दिया कि जी ठीक है भाई, ज्यादा सख्त है, तो जब उसको हमने पैदा कर दिया तो तुम्हारा पैदा करना क्या मुश्किल काम है, तुम्हारी अपनी समझ के मुताबिक जो भी बात कर रहे हैं, अगरचे कि हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। तो आगे फिर आसमान की पैदा करने की कैफियत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसको बनाया, तो फरमाया कि असमाऊ बनाहा रफा आसम कहा फसवाहा, तो उसकी छत को बुलंद किया रफा फसवाहा, उसको दुरुस्त बनाया कि कहीं इसमें शकूक और फतूर यानी कोई शिक नहीं है, फटान नहीं है, फटापन नहीं है, और फतूर कोई नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है उसके अंदर, और फटा हुआ या जोड़ पैबंद भी नहीं है कोई उसके अंदर। तो उसकी रात को तारीख बनाया, वो अख्तश लैलहा व अखरजा वहाहा, और उसके दिन को जाहिर किया। तो रात और दिन को आसमान की तरफ इसलिए मंसूब किया क्योंकि हा की जमीर लगाई ना रात के साथ भी, लैलहा और वहाहा, तो रात और दिन के साथ को आसमान की तरफ क्यों मंसूब किया कि रात और दिन आफ्ताब के तुलू और गुरूब से होते हैं और आफ्ताब आसमान से मुतालिक है, ठीक है, क्योंकि वो जमीन से तो नहीं सूरज निकलता ना, जमीन के अंदर तो सूरज नहीं है, वो तो आसमान से ही नजर आता है हमें, इस वजह से फरमाया। अच्छा, वल अर्द बादा दहाहा, और उसके बाद जमीन को बिछाया और बिछाकर उससे उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को उस पर कायम कर दिया। अखरज मिन्हा माआहा व मरआहा वल जिबाला अरसाहा, तो ये सब क्या है, मताअल्लकुम वाले अनआमिकुम, कि ये तुम्हारे और तुम्हारे मवाशी के फायदा पहुंचाने के लिए। असल इस्तिदलाल खल्के समा से था, मगर जमीन का जिक्र शायद इसलिए कर दिया कि इसके अहवाल हर वक्त पेश नजर हैं और गो समा के बराबर ना सही, लेकिन फी नफ्स ही इंसान की तख्लीक से जमीन की तख्लीक भी अशद है, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा शदीद है। बस हासिल इस्तिदलाल का ये हुआ कि जब ऐसी ऐसी चीजें हमने बना दी तो तुम्हारा दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल है, ठीक है, तो आसमान भी मुश्किल था, जमीन भी तुम्हारे मुकाबले में मुश्किल है, तो तुम्हारी तो कोई, तुम तो यानी कहते हैं ना उर्दू में, तुम तो बाएं हाथ का खेल हो, ठीक है, तुम तो मेरे बाएं हाथ का खेल हो, यानी तुम्हें तो ऐसे ही मैं चित कर दूंगा, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। तो उसी तरह से अल्लाह ताला हमें हमारी हैसियत दिखा रहे हैं कि तुम तो मेरी मखलूकात में से सबसे कमजोर मखलूक हो, सबसे छोटी मखलूक हो। आगे बास के बाद जो वाकयात मजाजात, जो वाकयात मजाजात के मुतालिक होंगे उनकी तफसील है, यानी कयामत का इम्कान और सेहत वकू तो साबित हो गया। सो जब वो बड़ा हंगामा आएगा, सो जब वो बड़ा हंगामा आएगा, यानी जिस दिन इंसान अपने किए को याद करेगा और देखने वालों के सामने दोजख जाहिर की जाएगी, तो उस रोज यह हालत होगी कि जिस शख्स ने हक से सरकशी की होगी और आखिरत का मुनकिर होकर उस पर दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी होगी, सो दोजख उसका ठिकाना होगा। और जो शख्स दुनिया में अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा होगा कि कयामत और आखिरत और हिसाब किताब पर उसका मुकम्मल ईमान हो और नफ्स को हराम ख्वाहिश से रोका होगा, यानी एतकाद सही के साथ अमल सालेह भी किया होगा, ठीक है, यानी उसका अकीदा भी सही होगा, एतकाद क्या अकीदा, और उसने अमल सालेह भी किया होगा, तो उसका तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। और अमल सालेह तरीक जन्नत है, मौकूफ अलैह नहीं है, यानी जन्नत जो है ना वो अमल सालेह के ऊपर मौकूफ नहीं है, अमल सालेह पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जन्नत का दाखला जो है उसका ताल्लुक ईमान और अकीदे के साथ है, उसका ताल्लुक अमल के साथ नहीं है। जब एक दफा आप ईमान और अकीदे से एंटर हो गए, सही ईमान सही अकीदा लेकर एंटर हो गए, अब उसके बाद जो वहां पर दराजात हैं वो अमल पर मौकूफ है। ठीक है, दराजात अमल पर मौकूफ हैं। तो फरमाया कि ठिकाना जन्नत होगा और अमल सालेह तरीके जन्नत है। ठीक है, जन्नत का रास्ता है, मौकूफ अलह नहीं है, क्योंकि कुफार बकसद इनकार इसका वक्त पूछा करते थे, यानी उनका मकसूद क्या होता था, कयामत का इनकार करना। तो इस मकसूद के साथ, इस नियत के साथ कयामत का वक्त पूछा करते थे कि कब ये कयामत आएगी। तो कहते थे कि यस अनून का अनिस साती अयाना मुरसाहा, कब आएगी कयामत। ठीक है, तो इनकार उनका मकसद होता था। सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक, क्योंकि बयान का मौकूफ अलैह इल्म है और कयामत का मुअय्यन वक्त हमने किसी को बतलाया नहीं है। तो फीमा अंता में जिक्र रहा कि तुझको क्या काम इसके जिक्र से, तो करने के लिए तो इल्म चाहिए होता है ना, इल्म के बगैर तो आप बयान नहीं कर सकते। तो बयान जो है वो इल्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और कयामत के मुअय्यन वक्त का इल्म तो हमने किसी को भी नहीं दिया। तो इसके इल्म की तायीन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ से है। तो तायुन कयामत के वक्त का अल्लाह ताला के पास है, और आप तो सिर्फ अखबार इजमाली से ऐसे शख्स के डराने वाले हैं जो इससे डरता हो और डर कर ईमान लाने वाला हो। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इजमाली खबरें दी, इजमाली खबरें जिनको अखबारुल गैब कहते हैं। ठीक है, अंबा कहते हैं अरबी में, उर्दू में, यानी अरबी में भी अखबार का लफ्ज इस्तेमाल होता है खबर का, और अंबा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है खबर के लिए। तो अंबा उल गैब, अखबार उल गैब, ये है नबी अलैहिस्सलाम को मिला हुआ इल्म। इल्म उल गैब नहीं है, इल्म उल गैब नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, इल्म उल गैब सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इल्म कहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने नबी को नहीं दी, बल्कि अखबारुल गैब दी है कि ऐसा मामला होगा, फिर उसके बाद ये निशानी आएगी, ये निशानी आएगी, ये मामला होगा, ये मामला होगा, ये मामला होगा। तो ये खबरें दी, और उनमें से कुछ खबरें नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उम्मत को भी बता दी। ठीक है, तो ये इजमाली, इजमाली कहते हैं सुपरफिशियल, तफसीली नहीं, सुपरफिशियल इजमाली नॉलेज अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दी। तो इन इजमाली अखबार से फायदा क्या कि आप उन लोगों को डराएं जो से डरता हो। ठीक है, यानी पहले से जो डरता है ना उसको और डराएं, यानी उसके ईमान में मजीद इजाफा हो, और डर कर ईमान लाने वाला हो वो शख्स यानी इनसे फायदा उठाएगा। और ये लोग जो जल्दी मचा रहे हैं, तो समझ लें कि जिस रोज ये उसको देखेंगे तो उनको ऐसा मालूम होगा कि गोया दुनिया में सिर्फ एक दिन के आखिरी हिस्से में या उसके अव्वल हिस्से में रहे। ठीक है, कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यलबथू इल्ला अशियतन अव दुहाहा, या तो दिन के आखिरी हिस्से में थोड़ी देर के लिए रहे, या दिन के सुबह के हिस्से में थोड़ी देर के लिए वो दुनिया में रहे। तो उनको ऐसा मालूम होगा कि गोया दुनिया में सिर्फ एक दिन के आखिरी हिस्से में या उसके अव्वल हिस्से में रहे, बस यानी वह बस यानी दुनिया की मुद्दत तवीला कसीर मालूम होगी, और समझेंगे कि अजाब बड़ी जल्दी आ गया। जिसकी ये इस्तेदा करते हैं, हासिल ये कि जल्दबाजी क्यों करते हो, वुकू के वक्त उसको यही समझोगे कि बड़ी जल्द हो गया, जिस देर को अब देर समझ रहे हो ये देर मालूम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि काफिर जो है वो नबी रसूल कहते ना कि भाई जिस चीज का तुम वादा कर रहे हो वो चीज अभी लेकर के आ जाओ, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि ये नबी हैं, मानते थे कि ये सच कह रहे हैं। तो कहते थे जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो आ जाएगी, और जब आ जाएगी ना तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम दुनिया में रहे ही नहीं, सिवाय एक दिन के, डेढ़ दिन के, या सुबह के, या शाम के। इसी तरह के कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। तो डोंट वरी, ये बहुत जल्द आने ही वाली है। और हकीकत यही है कि कयामत तो मौत के वक्त कायम हो जाती है, उधर ही से हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मारूफ मसाइल भी शुरू कर देते हैं, थोड़ा वक्त है। अगर किसी को किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो वो जरूर से पूछ ले, जवाब नहीं आता होगा तो माजुर कर लूंगा, और आता होगा तो फिर आपको बता दूंगा, पढ़ा लिखा होगा, सुना होगा कहीं से, बता देंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से। अच्छा, मारूफ मसाइल में शुरू कर देता हूँ सवाल, अगर चाहें तो आप उसके बाद पूछ सकते हैं। वह नाजात गरका, तो नाजात नजा से मुश्तक है, डिराइव्ड है लफ्ज नजा से, जिसके मानी किसी चीज को खींच कर निकालने के आते हैं, और गर्कन इसकी ताकीद है, यानी ताकीदन बयान फरमाया, गर्क यानी डाइव करके, ठीक کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس کتاب کے مطالعے میں غرق ہے. ٹھیک ہے, ہی از ڈراؤنڈ ان دا اسٹڈی آف دس بک, ان دا ریڈنگ آف دس بک. ٹھیک ہے, تو مستغرق ہونا یہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں, تو پوری قوت اور شدت خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ غرق کا لفظ. محاورے میں کہا جاتا ہے, یعنی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ اغرق النار, اغرق النازع فی القوس. ہاں, یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کے کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی. ٹھیک ہے, تو تیر کمان جو ہوتا ہے تو اس میں جب آپ کمان کو کھینچتے ہیں نا, تیر اس میں لگا کر کے, تو بہت, یعنی ایک تو وہ اس کی جو 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 ڈوری ہوتی ہے یا جو اس کے سٹرنگ ہوتی ہے وہ بڑی ٹائٹ لگی ہوتی ہے, تو اس کو کھینچنے میں نا اچھی خاصی قوت لگانی پڑتی ہے. کوئی بہت ہی کمزور آدمی جو ہے نا, وہ تیر کمان سے اچھی طریقے سے تیر کو شوٹ بھی نہیں کر سکتا. تو نازع کہتے ہیں کھینچنے والے کو, اور قوس جو ہے وہ کمان کو کہتے ہیں. تو وہ غرق ہو کر کے نازع نے اس قوس کو کھینچا. غرق ہونے کا مطلب کہ پوری شدت کے ساتھ اس نے, پوری قوت کے ساتھ اس نے کھینچا. تو ہے تو وہ اغرقا, یہ اغرقا ہوگا, اغرق نہیں ہوگا, اغرقا ہوگا, اغرق النازع فی القوسی. اچھا, اس سورت کی شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے, اور جواب قسم بدلالت حال حذف کر دیا گیا ہے, بدلالت حال حذف کر دیا گیا ہے. مراد اس سے قیامت اور حشر و نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے. تو قسمیں جو ہیں وہ تو فرشتوں کی کھائیں, اور قیامت جو ہے کا واقع ہونا, اصل مقصود قیامت کو ہی اسٹیبلش کرنا تھا, تو جواب قسم جو ہے وہ قیامت کا وقوع ہی ہے. تو بدلالت حال حذف کر دیا گیا ہے کہ وہ جواب قسم جو ہے وہ مذکور نہیں ہے کتابوں میں, یعنی الفاظ میں مذکور نہیں ہے. فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ شاید اس مناسبت سے کھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و نسق میں دخل رکھتے اور اپنی اپنی خدمت بجا لاتے ہیں, لیکن قیامت کے روز اسباب مادیہ کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, غیر معمولی حالات اور واقعات پیش آئیں گے, ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے. ٹھیک ہے, تو فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالی کے کیا ہوتے ہیں جی؟ کوئی لفظ بتائیں, انگریزی کا لفظ اگر استعمال کرنا ہے, اردو کا لفظ استعمال کرنا ہے, فرشتے اللہ تعالی کے کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑی آپ لوگ بھی تو پارٹیسپیٹ کریں نا, آپ سوال نہیں کرے تو چلیں جواب ہی دے دیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ فرشتے کیا ہیں؟ نورانی مخلوق, مخلوق رسول, سارے فرشتے رسول کام کرتے ہیں. اور مخلوق والا جواب آپ نے کیا دیا بھیا؟ تو سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, باقی سب مخلوق ہیں, ایجنٹس, ورکرز, رائٹ. فرشتے اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہیں, خادم ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں مسلمان, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ورکرز ہیں. اور کافروں کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ کہ فرشتے کچھ کافروں میں سے, یعنی یہ عقیدے رکھنے والے کافر بھی ہیں, کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیلپرز ہیں, ہیلپرز, مددگار. ٹھیک ہے, تو مددگار کہہ دینا شرک ہوگا, لیکن خدمت گزار کہنا یہ شرک نہیں ہوگا, اس لیے کہ خدمت گزار جو ہوتا ہے وہ مددگار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ کسی بڑے بادشاہ کا جو خدمت گزار ہوتا ہے نا, تو وہ خدمت گزار جو ہوتا ہے وہ بڑے بادشاہ کے, یعنی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا, بادشاہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس خدمت گزار کو ہٹا دے, مار دے جان سے, وہ کسی اور کو خدمت گزار بنا لے گا, اس کو اس خدمت گزار کے اوپر کوئی, یعنی کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی ہے. جبکہ مددگار جو ہوتا ہے, یہ مددگار جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے, انسان اس پر ڈپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مددگار نہیں ہے, یہ خدمتگار ہے, خادم ہے. اور یہ خدمت گزار جو ہیں, یہ فرشتے اس دنیا کی زندگی کے اندر, ابھی جو زندگی چل رہی ہے, اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کام فرشتوں سے بھی لیتے ہیں, اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق سے بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ اور لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں, जैसे इंसान, जैसे हैवान, अल्लाह ताला इंसानों से भी खिदमत लेते हैं, हैवानों से भी खिदमत लेते हैं, ठीक है। तो हर किस्म की खिदमतें, कुछ खिदमतें इंसान अल्लाह ताला की जो करता है वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से करता है, और कुछ खिदमतें यानी अल्लाह ताला का हुक्म उस पर आता है और वो खिदमत बजा लाता है, लेकिन कुछ खिदमतें इंसान जो है वो अनजाने में कर रहा होता है अल्लाह ताला की, उसको पता भी नहीं होता कि अल्लाह ताला का काम कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई भूखा था, ठीक है ना, उसको भूख लगी हुई थी, अब आपने जो है वो जाकर के उसको खाना खिला दिया। अब आपने जो खाना खिलाया तो आप समझ रहे हैं कि आपने अपने यानी अपने इल्म से उसको खाना खिलाया, आपके दिल में बात आई कि मैं जाके उसको खाना खिलाऊं, ठीक है, यानी आपको ये बात आई समझ में आई कि मैं जाके खाना खिलाऊं, या आपको वो बंदा नजर आया इस वजह से आपने खाना खिला दिया, लेकिन ये जो काम आपने किया ये असल में काम है अल्लाह ताला का काम, अल्लाह ताला ने आपसे करवाया है ये काम, आप अल्लाह ताला का एक काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला की, ठीक है, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये मैं अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया, और एक होता है डायरेक्टली काम लेना। डायरेक्टली काम लेना का मतलब कि कोई फरिश्ता आकर के आपको हुक्म दे, को बताए कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि आप ये काम करें जाकर के, अब आप जाकर के वो काम करते हैं, तो ये डायरेक्ट हुक्म की वजह से। लेकिन ये तरीका किनके, ये तरीका कौन इंसान करते हैं, ये तरीका जो है वो या तो अल्लाह के नबी करते हैं, नबियों तक फरिश्ते जो है उस तरीके से पैगाम पहुंचाते हैं और फिर वो उस पैगाम के ऊपर अमल करते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, तशरीई काम भी होते हैं और तकवीनी काम भी होते हैं। तशरीई काम जो नबी होते हैं वो करते हैं, और तकवीनी काम कौन करते हैं, ये जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, ठीक है, ये तकवीनी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत खजर अलैहिस्सलाम, खजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाकर के फलाने बच्चे को मार दो, अब खजर अलैहिस्सलाम ने जाकर के बच्चों को मार दिया, ठीक है। तो ये 12 किस वजह से, कोई अल्लाह ताला ने तशरीही हुक्म नहीं दिया था खजर अलैहिस्सलाम को, ठीक है, बल्कि ये तकवीनी हुक्म था कि बस जाकर के उसको मार दो फॉर नो रीजन, मतलब ऑफ कोर्स देयर वाज अ रीजन, हिकमत तो होती है अल्लाह ताला के सारे सारे कामों में, लेकिन इसका ताल्लुक शरीयत के साथ नहीं था। तो खजर अलैहिस्सलाम अगरचे के इंसान है लेकिन काम क्या कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली अल्लाह ताला फरिश्तों से करवाते हैं, मारने का काम फरिश्ते से करवाते हैं, लेकिन यहां पर खजर अलैहिस्सलाम के जरिए से करवा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से और भी तकवीनी काम अल्लाह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम के साथ करवाए। कहने का मकसद ये है कि इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला के वर्कर्स फरिश्ते भी होते हैं और फरिश्तों के अलावा दूसरी मखलूक भी होती है, लेकिन कयामत के दिन दूसरी मखलूक सारी की सारी सस्पेंड हो जाएगी, अब वो कुछ नहीं कर सकेगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते काम करेंगे, वहां पर सिर्फ फरिश्तों वाले वर्कर्स, फरिश्ते वाले वर्कर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो यही फरमा रहे हैं कि यहाँ जो फरमाया ना कि फरिश्तों की इस जगह 5 सिफात, अच्छा, कयामत के रोज असबाब मादिया के सब रिश्ते टूट जाएंगे और सिर्फ असबाब रूहानिया रह जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते जो है वो असबाब रूहानिया हैं। तो गैर मामूली हालात वाकयात पेश आएंगे, इन वाकयात में सिर्फ फरिश्ते काम करेंगे, रूहानी असबाब बस, हर मादी सबब जो है वो उस वक्त मुनकतह हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। फरिश्तों की इस जगह 5 सिफात वो बयान की गई हैं जिनका ताल्लुक इंसान की मौत और नजाए रूह से है, रूह के खींचने से है। मकसद तो कयामत का हक होना बयान करना है, शुरू इसका इंसान की मौत से किया गया कि हर इंसान की मौत खुद उसके लिए एक जुज़वी कयामत है, कुल्ली कयामत तो बाद में आएगी, ये जुज़वी कयामत है, और कयामत के एतिकाद में इसका बड़ा दखल है, क्योंकि मरने ही से ये सारा सिलसिला शुरू होता है हिसाब किताब का। इन 5 सिफात में से पहली सिफत अन्नाज़िआत गर्का, यानी सख्ती के साथ खींच कर निकालने वाले, मुराद इससे वो अजाब के फरिश्ते हैं जो काफिर की रूह सख्ती के साथ निकालते हैं, मुराद इस सख्ती से रूहानी सख्ती और तकलीफ है। ये जरूरी नहीं कि देखने वालों को भी इस सख्ती का एहसास हो, इसीलिए बसा औकात ये देखा जाता है कि काफिर की रूह बज़ाहिर आसानी से निकलती है, मगर ये आसानी हमारे देखने में है, जो सख्ती उसकी रूह पर हो रही है उसको कौन देख सकता है, ठीक है, इसलिए कि उसका जिस्म जो है वो हम देख सकते हैं, उसके रूह के साथ जो मामला हो रहा है वो हम नहीं देख सकते, हमारे पास ये विजन नहीं है। तो फरमाया कि उसको कौन देख सकता है, वो तो अल्लाह ताला ही की खबर देने से मालूम हो सकती है। तो हमें इस दुनिया के अंदर रूहानी मामला जो है वो सिर्फ खबर से मालूम होते हैं, ठीक है, मुशाहिदा जो है ना वो हमें नहीं मिलता, इल्ला किसी को अल्लाह ताला मुशाहिदा अता फरमा दें, सिर्फ उसको मिलता है, अदरवाइज ये मुशाहिदा हमें नहीं दिया गया इस दुनिया के अंदर। इसीलिए इस जुमले में यह खबर दे दी गई है कि कुफार की रूह को खींचकर सख्ती से निकाला जाता है। ठीक है, तो जो सकरातुल मौत होता है ना, जिसको गमरातुल मौत, सकरातुल मौत, मौत के वक्त की सख्ती, तो ये सारी की सारी सख्ती जो है वो रूहानी वजूद पर होती है। ये जिस्म की सख्ती के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता कि तकलीफ हो रही है, शिद्दत हो रही है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसको जो है वो तय हो रही है, या उसका सर में जो है वो चक्कर आ रहे हैं, या ये सब जिस्मानी तकलीफ, ये सब जिस्मानी तकलीफ है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत शदीद बुखार हुआ, बहुत तकलीफ हुई, पसीना आया पूरे बदन के ऊपर, कितना ज्यादा गर्मी होती थी कि ठंडे पानी के पूरे यानी बर्तन जो है वो उंडेले जाते थे। तो ये सब क्या तकलीफ थी? ये जिस्मानी तकलीफ थी, ये रूहानी तकलीफ नहीं थी। और बहुत सारे काफिर होते हैं, बस जी एकदम से आपने देखा, और आनन फानन, कोई उनके ऊपर चेहरे के ऊपर कोई तासुर ही नहीं आया, कोई पसीना ही नहीं आया, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, एकदम से अगले लम्हे वो पता चला बंदा मर गया। तो हम क्या उसको ये कहेंगे कि उसके ऊपर कोई मौत की तकलीफ नहीं आई? नहीं, आई तकलीफ उसके ऊपर, क्योंकि वो काफिर था, तो उसके साथ जो है वो रूहानी तकलीफ वाला मामला हुआ। लेकिन ये खबर का मामला है, और ईमान वाला वही होता है जो खबर पर ईमान लेकर के आए, खबर की तस्दीक करे। जो मुशाहिदे की तस्दीक करता है ना, वो ईमान वाला नहीं होता। ठीक है, दूसरी सिफत है वह नाशतात नश्ता, नाशतात नश्त से मुश्तक है, जिसके मानी बंधन खोल देने के हैं। जिस चीज में पानी या हवा वगैरह भरी हो, उसका बंधन खोल देने से वो पानी वगैरह आसानी के साथ निकल जाता है। इसमें मोमिन की रूह निकलने को इससे तशबीह देकर बताया है कि जो फरिश्ते मोमिन की कब्ज रूह पर मुकर्रर हैं, वो आसानी से उसको कब्ज करते हैं, शिद्दत नहीं करते। यहाँ भी आसानी रूहानी मुराद है, जिस्मानी नहीं है। इसलिए किसी मुसलमान बल्कि मर्द सालेह को, आपका जो सवाल था ना, गुनाहगार फासिक फाजिर मुसलमान, तो उसका जवाब हजरत दे रहे हैं कि किसी मर्द सालेह नेक मर्द को बवक्ते मौत नज़ा रूह में देर लगने से ये नहीं कहा जा सकता कि उस पर सख्ती हो रही है। अगरचे जिस्मानी तौर पर यह सख्ती देखी जाती है, ठीक है, जिस्मानी तौर पर लगता है कि बड़ी उसको सख्ती हो रही है, उसकी जान नहीं निकल रही, ठीक है, लेकिन ये चीजें जो है ना, ये कोई हतमी नहीं होती है कि जी उसके ऊपर ये रूहानी तकलीफ हो रही है, इस वजह से उसकी जान नहीं निकल रही। ठीक है, वो जो हदीस मुबारक है ना कि एक सहाबी की जान नहीं निकल रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी माँ को बुलाओ, ठीक है, तो माँ से फिर माफी दिलवाई, फिर उसकी जान निकल गई। तो उस हदीस को जो है वो हर इंसान के ऊपर मुंतबिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, हदीस का इल्म इसी वजह से ना बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स वाला इल्म होता है, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वरना आम आदमी क्या होता है, वो हदीस पढ़ता है और समझता है कि फिर अब ये हदीस हर एक के ऊपर फिट की जा सकती है, हर एक पर नहीं फिट की जा सकती। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूहानी विजन अता फरमाया था, तो उस रूहानी विजन के मुताबिक आप ने जान लिया था कि इसको ये रूहानी तकलीफ हो रही है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि रूहानी तकलीफ हो रही है कि जिस्मानी तकलीफ हो रही है। तो इस वजह से बदगुमानी नहीं कर सकते हम, अगरचे जिस्मानी तौर पर यह सख्ती देखी जाती है, असल वजह यह है कि काफिर को नज़ रूह के वक्त ही से बरज़ख का अजाब सामने आ जाता है। इसकी रूह इससे घबरा कर बदन में छुपना चाहती है, फरिश्ते खींच कर निकालते हैं, और मोमिन की रूह के सामने आलम बरज़ख का सवाब, नेमतें और बशारतें आती हैं, तो उसकी रूह तेजी से उनकी तरफ जाना चाहती है। ठीक है, अब इस जुमले के अंदर इस सवाल का जवाब है कि जो फासिक और फाजिर होता है, ठीक है, उसके बारे में हदीसें गवाह हैं, शाहिद हैं उसके बारे में कि फासिक और फाजिर मुसलमान, उसके ऊपर कब्र का अजाब होता है, कब्र का अजाब होता है। तो जब कब्र का अजाब उसका होने वाला है, तो उसकी रूह फिर बदन में छुपेगी कि बदन से निकलने के लिए तैयार रहेगी? ये मामला तो उसके सामने खोल दिया जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है आगे। तो अब तो उसकी रूह छुपेगी ना बदन के अंदर, और जब बदन के अंदर छुपेगी तो फिर उसको निकालने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी, और जो खुद ही निकलने के लिए तैयार हो उसको निकालने के लिए सख्ती नहीं करनी पड़ती। तो फिर ये जो मुसलमान हैं जिनकी रूह नाशतात निकालेंगे, ये वो मुसलमान हैं कि जो कि अपनी जिंदगी तौबा के साथ गुजारते हैं, ठीक है, गुनाहों से बच करके जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला के सामने रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं, बेशक गुनाह करते रहे, बेशक गुनाह करते रहे, लेकिन रोते भी हैं, माफियां भी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, और अल्लाह ताला से माफ करवा करके अपने गुनाह जो है दुनिया से जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनके लिए आगे कब्र के अजाब का मामला नहीं है, तो इनकी रूह तैयार बैठी होती है। ऐसे लोग जो होते हैं फिर वो बाकायदा इंतजार करते हैं। हमारे कितने अकाबरीन हैं इस दौर में भी, अभी भी जिनका इंतकाल हो रहा है, उनके वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि वो तैयार बैठे होते हैं कि बस अब तो हमने जाना है, बस जी अब हमें नहीं देखना रमजान रमजान, बस हमने जाना है इधर से। ठीक है, पहले से अल्लाह ताला की तरफ से उनको खबर मिल जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कब्र के अजाब से, आखिरत के अजाब से और सकरातुल मौत और गमनातुल मौत से महफूज फरमाए, और पहले अपनी रजा अता फरमाए उसके बाद मौत अता फरमाए। इसका आखिरी काज खत्म करते हैं।